मूर्ति सालग्राम की उपासना करता था। तत्व तत्व कुछ नहीं जानता था, ब्राह्मण था। पूजा के बाद में अपने डिबिया में बंद करके, गले में बांध करके चल पड़ा। कहे अरे आपसे बढ़कर के और कौन भक्त हो सकता है। इस तरह से घूमते घामते पृथ्वी के जितने वो, विशेष करके दक्षिण भारत में सबसे बड़ा जो मंदिर है, हाँ श्रीरंगम नहीं, अरे भाई त्रिवेंडम में पद्मनाभ जी का, उस समय का, उस समय की बात कर रहे हैं। वहां पर वहां का राजा सबसे बड़ा है, अपने को उनका ट्रस्टी कहता है, सेवक कहता है, और उनके लिए सेवा करता है। कितना खर्च करता है, उसके राज्य में सभी वैष्णव लोग हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे बड़ा जगन्नाथ जी के सेवक, जगन्नाथ जी के वहां पर पता लगा जी इंद्र के यहाँ साक्षात खाते पीते हैं। इंद्र ने कहा कि मैं भक्त नहीं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भक्त नहीं हूँ, कौन है, शिव जी। शिव जी ने कहा अरे वो प्रहलाद हमसे बड़ा है। प्रहलाद जी ने कहा जी हमसे बड़ा हनुमान है, हनुमान। हनुमान ने कहा जी भाई मैं तो प्रभु के पास भी नहीं बैठ सकता, ये पांडव लोगों में अर्जुन सबसे बड़ा था। अर्जुन ने कहा जी हम, अरे हमको गोपियों क्या भेजा ब्रज में, हमसे श्रेष्ठ कौन है। उद्धव जी, उद्धव जी ने कहा अरे मैं तो पाषंड भी नहीं हूँ, भक्त हूँ। मैं जिनकी चरण की धूलि की सब समय आकांक्षा करता हूँ वो गोपियाँ सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। उन गोपियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, लगा दिया राधा तक जी। इसलिए यदि कृष्ण की के प्रति सेवा की जो सबसे सर्वोत्तम भावना है वो राधा जी की है। अब उसके साथ एक और उपाख्यान बोला गोप कुमार का, वो तो भक्तों के माध्यम से गए और ये भगवान के स्वरूप के तारतम्य से भक्तों का तारतम्य ले गए। ये चले ज्योतिषपुर से आसाम से, आसाम से चल करके आए सागर में, सागर से गया में, गया से आए वाराणसी, वाराणसी से आए प्रयाग, प्रयाग से चले आगे बढ़े मथुरा में आए। मथुरा से वृंदावन में प्रवेश किया, वहीं पर गुरु जी से भेंट हुई और उनकी कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़े। अंत में आकर के ब्रज में पधारे। ब्रज में गोपियों का भाव सर्वोत्तम है, ऐसा उन्होंने उपलब्धि की, इससे बढ़कर के और कोई भाव नहीं है। देखो मैया तुमको एक बात बतलाऊं, इनका रहस्य, यदि तुमको भक्ति करना है भागवत के अनुसार में तो गोपियों जैसे भाव अपने अंदर में लाओ। नहीं ये कौन सा भाव लाऊं, जितने ब्रज में भाव हैं इनमें चार प्रकार के भाव श्रेष्ठ हैं, जिसमें कि दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर। सखाओं से भी बढ़कर के यशोदा मैया और नंद बाबा का भाव है, और इनसे भी बढ़कर के है गोप कुमारियों का। गोप कुमारियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती हैं, क्या भावना है, लौकिक संद बंधुवत। लौकिक सद बंधुवत भाव, मेरे प्रियतम है, विवाह इत्यादि की कोई उपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, ये मेरे प्रियतम है, इसी को परकीय भाव कहते। मैया तुमसे मैं लज्जा, अब अमंत में क्या तुमसे लज्जा करूं, यदि लज्जा करता हूं ए दर्शनो, हंसता हंसता लौकिक, जैसे अब मैं अंत में जा रहा हूं मरने के लिए, अब तुमसे मैं क्या छिपाऊं, मैं निर्लज होकर के तुमसे कह रहा हूं कृष्ण को तुम ब्रह्म भगवान मत मानना, तुम समझो कि वो नंद के पुत्र हैं और तुम अपने को गोपी समझो, और इस कृष्ण में गोपी जन बल्लभ को जैसे गोपियां अपना बल्लभ प्राण बल्लभ समझती हैं, ऐसे ही तुम कृष्ण को अपना प्रियतम गोपी बल्लभ अपना बल्लभ समझो यदि तुम्हारा कल्याण चाहते। बस वो कृतार्थ हो गई। कृष्ण उनके ससुर के भी बाप लगते हैं, उत्तरा जी के, उत्तरा जी हैं, इसके बाद में सुभद्रा जी हैं, माने अभिमन्यु, अभिमन्यु की माता हैं सुभद्रा जी, ये सुभद्रा अर्जुन की बहन,
कृष्ण की बहन
है। हाँ कृष्ण की बहन है, हमको पथभ्रष्ट मत करो भाई। तो कृष्ण की बहन है, तो कृष्ण कहाँ ऊपर चले गए और ये कहाँ नीचे है, ये अपनी मैया को, मैया तुम अब इनको भगवान और ये मत समझो जो कृष्ण हमारे ऐसे हैं, अब उनको तुम क्या समझो, अपना प्राण प्रियतम गोपी जन बल्लभ के रूप में इनकी आराधना करना, ये उपदेश दिया, ये भागवत का सार है। इसी को इन्होंने अंतिम यहां पर श्लोक में कहा है, ये बतलाते हैं यहां पर ये बतलाने सर्व श्रीमद भागवतम पुराण मम जद वैष्णवानम प्रियम जस्मिन ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म विष्करण दक्षिण मन सुपठन विचारण पढ़ो भक्त्या विमोचन नरः इत्यादि श्लोक जो बगा, इसके अंत में ये कहते हैं भवे 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 जथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो जत प्रभो, हे प्रभु भवे भवे संसार में भ्रमण करते करते कोटि कोटि जन्मों तक अनंत कोटि जीवन तक भ्रमण करते हुए कभी गधा कभी सुअर कभी मछली कभी मनुष्य कभी गंधर्व कभी राजा कभी रंग कभी देवता कभी मनुष्य, इस तरह से विभिन्न 84 लाख प्रकार के जीवनियों में अनंत कोटि जीवनों से अनादि काल से भ्रमण करते हुए त्रितापों के द्वारा सर्वदा दग्ध होते हैं। अभी मालूम नहीं हो रहा है, अभी 10 वर्ष जाने दो, जरा बूढ़ा हो जाओ, जब ये झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, केश श्वेत हो जाएंगे, रोगों से शरीर जर्जरित हो जाएगा, जरा 100 वर्ष आने दो तो पूरा होने दो, और तब देखो लठिया से भी नहीं चल सकेंगे, खांसी खांसी करते करते दम भल जाएगा, श्वास रुक जाएगा, कब बात पित्त घेर लेगा, मरण जरूर होगा, ये दुख भोग भी जरूर यदि भजन नहीं करेंगे तो। इस प्रकार से घूमते 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 भगवान बड़ी कृपा से अपने भक्तों के माध्यम से या स्वयं आकर के जीवों पर कृपा करके उनको भक्ति प्रदान करने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं, और लीलाओं के बाद में भागवत को छोड़ जाते हैं, साधु संत लोग इसी की कथाओं को भगवान के रूप में जगत को देते हैं। तो कैसे देते हैं, भक्ति 3 प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति और एक प्रेमा भक्ति। इस शरीर से प्रेमा भक्ति नहीं होगी, इस शरीर में पहले आरंभ होगा कोटि कोटि जन्मों के पूर्व संस्कारों से साधु संत पर श्रद्धा आएगी, वो लोग धीरे 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 इस भक्ति को हृदय में देते जाएंगे, कृष्ण की सेवा की वासना ये चीज उसके अंदर में देते हैं, यही दीक्षा के द्वारा गुरुदेव उनमें भक्ति को अर्थात कृष्ण सेवा की इच्छा को इसमें प्रवेश करा देता है, वही सबसे प्रथम श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति तक पहुंचती है। आसक्ति तक ये साधन भक्ति हुई, किसका साधन, उत्तमा भक्ति का साधन, हम उत्तमा भक्ति का साधन कर, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति का नहीं, योग मिश्रा का नहीं, अपने स्वार्थ से कामना वशतः किसी कामना रख करके भगवान की भजन करेंगे तो अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं होगा, वो भक्ति नहीं कहलाएगी, इसलिए उत्तम भक्ति का जब हम गुरुपाद पद्म से शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के आश्रय लेकर के जब भजन करेंगे केवल मात्र कृष्ण की प्रीति के लिए ही कृष्ण के प्रति सेवा की भावना रहेगी, कोई भी अभिलाषा न रहे, तब ये उत्तम भक्ति साधन के रूप में पहले ये होती, उस समय हम अनर्थग्रस्त रहते हैं, इसलिए कृति साध्या भवेत साध्य भावा ससाधन विदा, अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति का साधन श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन इत्यादि करते हैं तो उसको कहते हैं साधन भक्ति, कब कहते हैं? जब भाव भक्ति को लक्ष्य करके जब साधन करते हैं तब वो होगी भक्ति साधन। और भाव भक्ति का उद्देश्य न रख करके गोविंदाय नमः, उड़ो खोई गोविंदाय नमः, धनजन हे भगवान हमको पुत्र इत्यादि दो, हमको मुक्ति मिल जाए, तो ये भक्ति उत्तमा नहीं है। इसके लिए नहीं कहा गया साधन भक्ति, किसके लिए कहा गया? भाव को लक्ष्य करके जो हम श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हैं तो अनर्थ अवस्था में इसको साधन भक्ति कहते हैं। यही अनर्थ जब दूर होता जाएगा गुरु वैष्णव के उपदेश से, श्रवण कीर्तन इत्यादि के माध्यम से जितनी उत्ति होती जाएगी, पहले निष्ठा होगी, प्राण जाय बरु भक्ति न जाय, ऐसा होगा, प्राण चला जाएगा, समस्त संसार हमारा विरोधी हो जाए किंतु कृष्ण की भक्ति मैं नहीं करूंगा, छोड़ूंगा, खंड खंड यदि जाए देह प्राण, प्राण और ये सब बोटी बोटी कोई काट दे मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ सकता, ऐसे दृढ़ निष्ठा को निष्ठा कर। यही निष्ठा आगे बढ़ करके रुचि होती है, मन लगने लगे और यही रुचि बढ़ करके आसक्ति होगी, यहीं तक साधन समाप्त हुआ। अब ये साधन के बाद में, आसक्ति के बाद में भगवान की भक्ति जो है एक कृपा साध्य है, भाव भक्ति, या तो भगवान की कृपा से होगा या भक्तों की कृपा से, दोनों एक ही चीज है। भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं, भक्त की कृपा से भगवान, ऐसे भक्तों का चरण आश्रय करके जब हम चलेंगे तो ये भाव भक्ति। भाव भक्ति माने क्या? साधन करते हुए आसक्ति की परिपक्व दशा में ऊपर से, कहाँ से? कृष्ण के परिकरों से, जहां पर हमारा लोभ है वहां से शुद्ध सत्व लादनी और संबित का साथ हमारे इधर में प्रवेश करता है, यह है भाव भक्ति। वो साधन के द्वारा नहीं होगा। दो प्रकार के बतलाई गई कृपा, जो पहले एक अहेतुकी और एक सहेतुकी। सहेतुकी मैंने भगवान ने साधन करने जैसा मन, स्वस्थ शरीर, साधुओं के संग में मिलना इत्यादि, यह है सहेतुकी। और एक बात, किसी के सिर पर हाथ रख दिया, इशारा कर तुमको भगवत भक्ति प्रेमा भक्ति हो जाए और वो शुद्ध सत्व तुम्हारे हृदय में आ जाए, जैसे देखते हैं बृहद भगवतामृत में गोप कुमार ने देखा, जो जिसको ये सुना रहे हैं कथा, सब कुछ कथा सुना दी तो भी उसको नहीं आया, तो उसके तरफ में देख करके ऐसे सिर पर हाथ रखा और झट प्रेम में एकदम पागल होगा, देखा जो सर 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 करते हुए ग्लोक वृंदावन में अपर धाम में पहुंच गया। यह है अहत की कृपा। दोनों कृपाएं ही ठीक है, हम लोग के ऊपर में यदि कृपा करेंगे तो ऐसे ही साधन समझते दे देंगे। जैसे एक आदमी को किसी के घर में गया, चावल दाल तरकारी आग चूल्हा चौकी बेलन चाकी सब दे दिया, कहा रसोई बनाओ खाओ भगवान का भोग, और किसी को कहा तुम ठाकुर जी का प्रसाद खाएगा, कहाँ खाएंगे, बस राबड़ी मलाई महन भोग पूड़ी कचौड़ी दाल चावल, कहा लो प्रसाद एक ही साथ में करवा खाए, और वो अभी लकड़ी जलाए चूल्हा लगाए रोटी बेले बनाए सब्जी बनाए और सब बना करके तब वो भोग दे करके खाए, ये दोनों ही भगवान की कृपा है। इस तरह से जब भाव अवस्था में पहुंचता है तो भाव के लिए जो साधन करता है वो कौन है? ये साधक। अभी हम लोग अभी साधक हैं कि नहीं, आप लोग हो सकते हैं किंतु मैं अभी साधक नहीं हुआ। साधक ऐसे कौन है? बिल्व मंगल जैसे लोग ये साधक आते हैं, जिनकी लठिया पकड़ करके कृष्ण वृंदावन ले आए, कृपा दिया आपने, ये लोग साधक हैं। किसके? भाव भक्ति के। ताप भाव भक्ति आई भागवत में, जो पहले जो बतलाया गया वो कौन राजा? अम्बरीश महाराज, भरत, इन लोगों को भाव अवस्था तक हुआ था, तो भरत तो थोड़ा सा नीचे चले आए शिक्षा के लिए। यदि कोई व्यक्ति साधन अवस्था में संसारी किसी को अपने कुत्ते को अच्छा पालन कर, आश्रम में कुत्ते रखे, सब कुछ प्रत्याग कर दिया, किसी को रख लिया, एक हिरण पाल लिया, तो क्या होगा? आसक्ति जमते जमते भगवान तो दूर हो जाएगी, हमारे मन में वो बैठ जाएगा, खबरदार ये मत करो। यदि किसी को रखा तो वहीं से चौपट हो जाएगा, भाव अवस्था से भरत महाराज जी गिर गए, ऐसे हम लोगों को नहीं गिरना है। अब तो कृष्ण के चरणों में, गुरु के चरणों में, ऐसे मुक्त महापुरुष जो वैष्णव हैं उनके चरणों में ही प्रीति और ममता रखनी है। संसार में की सारी प्रीतियों को एक साथ ममता को बटोरो, कृष्ण के चरण में दे दो, ऐसा करो। तो अभी साधक कौन है? बिल्ल मंगल कोटि। अब अपने को विचार करो जो मैं कहाँ हूं। इसलिए भक्त कहते हैं कि न प्रेम गंधोस्ति दराप में रहो इत्यादि। जो जितना ही उच्च कोटि का होता है उसमें इतनी दीनता आ जाती है, और सचमुच में ऐसा समझता है कि हमें भक्त। राधा जी समझती हैं हिरण को भक्ति हो गई है, मयूरों को भक्ति हो गई है, पुलिंदी कन्या को हो गई, किंतु हमको भक्ति नहीं हुई, और मर करके हिरण बनी, ऐसी भावना आती है। इसलिए हम लोगों को यहीं पर उपदेश देते हैं इस भक्ति में, अंत में भवे भवे यथा भक्ति। ऐसी कौन सी भक्ति? अभी जो बतलाया तारतम्य से उत्तराजी को बतला रहे हैं, वो जैसे उत्तरोत्तर पहले भाव, पहले साधन भक्ति, फिर इसके बाद में भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में भी हनुमान इत्यादि से बढ़ते हुए चले गए पांडव, पांडव से चले गए उद्धव जी, उद्धव से भी चली गई गोपियां, गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ दो, उन दोनों में भी एक सबसे श्रेष्ठ, उन्हीं की भाव। ये सब हम लोग को लेकर के आदर्श तब भजन करना चाहिए। तथा कुरुष हे प्रभो देवेश, हे कृष्ण, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे गोपीकांत, हमारी इस आशा को आप पूर्ण करें। उन्होंने कहा भक्त ने, अच्छे होगा, कैसे होगा? तो वो कहते हैं देखो, और भागवत का अंतिम श्लोक, द्वादश स्कंद का अंतिम श्लोक, ये जो भक्ति की बात बतलाई हमने, साधन भाव और प्रेम तीनों की जो भक्ति बतलाई, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए गुरु जी ने तुमको एक मंत्र दिया है, एक नाम दिया है, दो चीज दिया। पहले क्या दिया? महामंत्र दिया, और दूसरा क्या दिया? मंत्र दिया है। सब मंत्र हैं दस, या एक भी कृष्ण संबंधी मंत्र ना? पहले महाप्रभु के समय तक या उसके बाद भी एक मंत्र होता था, गोपाल मंत्र, उसी से सब लोग भवतार करके ऊपर चले जाते। अब हम लोगों की सुविधा के लिए हमारे गोस्वामियों ने, आचार्यों ने, महाप्रभु के अनुगत जो हैं गुरु, गुरु मंत्र, गौर मंत्र, गोपाल मंत्र, उसमें उनकी गायत्री भी है, ब्रह्म गायत्री है, गुरु गायत्री है, गौर गायत्री, काम गायत्री है, ये सब मंत्र देते। कहते हैं इनमें से जो भक्ति जैसे होती है लोगों को सरल रूप में, सब लोगों के लिए, सब साधारण लोगों के लिए, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम स्तं नमामि हरिं परिम। नाम संकीर्तनम जस्य, जिसका नाम संकीर्तन समस्त पापों को दूर कर देता है, अनर्थों को दूर कर देता है, समस्त दुखों को दूर करता है, यहाँ तक कि कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्रदान करता है सहज रूप में। वो स्वयं नाम ही कृष्ण है। मंत्र आपको लेकर के संबंध कायम करके इस ब्रह्मांड तक या इससे ऊपर तक ले जाएगा, बैकुंठ के नीचे तक वहीं पर छोड़ देंगे, उस समय शुद्ध नाम अत्यंत विरह युक्त होगा, ये कृष्ण ही, उस समय में कृष्ण नाम हो जाएंगे, और इस तरह से समस्त दुखों को दूर करने वाले। और कृष्ण की वह प्रेमा भक्ति जो उत्तरा को उन्होंने दिया परीक्षित महाराज जी ने, यह भावों को प्राप्त करा देता है, इससे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं। इसलिए हरेर नाम अयव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए समस्त शंकाओं को छोड़ करके इस नाम का आश्रय लो। कोई भी किसी जाति का हो, किसी भी धर्म में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, विधवा हो, विवाहिता हो, पुरुष कैसा भी हो, जो जहां स्थाने स्थिता तनवांग मनो भी, जो जहां पर है वहीं से भगवान का नाम कीर्तन करे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी महामंत्र ले आए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, यह नाम का आश्रय। आज श्रीमद् भागवत को यही पर समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भागवत जी आप लोगों के हृदय में प्रवेश करें, इन तत्वों को समझें और शुद्धा भक्ति लाभ करके इस भागवत पाठ से, या शुद्धा भक्ति हो, साधन भक्ति में प्रवेश हो, साधन भक्ति से फिर भाव भक्ति में प्रवेश हो, और भाव भक्ति से धीरे 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 प्रेम स्नेह मान प्रणय गोपियों का अनुगत हो, सब सिद्धि हो जाए। आज यहीं तक समाप्त करो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। कल इसकी समाप्ति और पूर्णाहुति होगी कथा की, आप लोग उसमें भाग लेंगे। यहाँ पर हवन होगा, साथ साथ में हवन होने के बाद में पहले भागवत की पूजा होगी। सभी लोग आप लेकर के पुष्प इत्यादि ले आएंगे और इनको प्रणाम करेंगे, तो पुष्पांजलि देंगे। पुष्पांजलि दे करके तब पूर्णाहुति होगी हवन यज्ञ। वो हवन यज्ञ और नहीं, केवल कृष्ण के लिए ही होगा, भागवत के लिए होगा। भागवत कृष्ण स्वरूप है। इसके पश्चात में ठाकुर जी का जो भोग लगेगा प्रसाद आप लोग, प्रभु की कृपा के रूप में प्रसाद लें खूब श्रद्धा के साथ। और भागवत से यही प्रार्थना कीजिए, हरि गुरु वैष्णव से यहाँ पर भी बैठे हुए हैं कृष्ण, वही भागवत है। वहाँ के साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु महा उदार राधा कृष्ण संयुक्त हैं, इनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि यह भागवत का भाव हम लोगों के हृदय में प्रवेश करें और कृष्ण की या राधा जी की सेवा की प्रवृत्ति हमारे अंदर में आए और उसी रूप में हमारी सिद्धि हो। आज यही करते हैं दर्शन।
रूपं तस्य त्रिजभुरिपरं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकामाधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतिता
कल राधा जी का, श्रीमती राधिका जी का जन्म तिथि है। आज उनके जन्म तिथि का अधिवास तिथि है। आज हम लोग श्रीमती राधिका जी की अधिवास तिथि को मनाने जा रहे हैं। कल माने राधाष्टमी के दिन भोर 4 बजे 5 बजे श्रीमती राधिका जी का जन्म होता है। ऐसा पुराणों में उल्लेख है कि जब कृष्णचंद्र जी कुछ अनमने लग रहे हैं गोलोक वृंदावन, चित्त कुछ चंचल हो रहा है, श्रीमती जी ने पूछा आज बड़ी तैयारी हो रही है, कहाँ की तैयारी हो रही, चित्त चंचल किस लिए हो रहा है? तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो जरूर कुछ बात है, चित्त चंचल होने का कुछ कारण जरूर होगा। मैंने कहा कि मुझे भूमंडल में जाना है, जीवों को उद्धार करने के लिए हमको जाना आवश्यक है। मैं ब्रह्मा जी के एक कल्प में एक बार जाता हूँ और इसके बीच में तरह तरह से उपाय करता हूँ कि जो जीव हमें अनादि काल से बिछुड़े हुए हैं और ये सांसारिक भोगों में लगे हुए हैं, किसी प्रकार से उनको निकाल करके मैं अपने चरणों में लाना चाहता हूँ। किंतु वो जीव ऐसे हैं, बहुत ही कम इधर में आते हैं। मैंने बराह रूप धारण किया, कमठ रूप धारण किया, सुकर रूप धारण किया, निशिंग रूप धारण किया, राम रूप भी मैंने धारण किया, कभी कभी कल्कि रूप भी धारण करता। इस तरह से मैं तरह तरह के रूपों को धारण करके जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता हूँ, किंतु उससे जीव अधिक नहीं आ रहे। इसलिए मैं ऐसे ब्रज की लीला को वहाँ पर प्रकट करूँगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाने। तो मैं भी आपके साथ में चलना चाहती हूँ। तो ठीक है, आप चल सकती हैं, तो आप तैयार हो जाइए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, जहाँ पर जमुना नदी नहीं है, जहाँ गिरिराज नहीं है, जहाँ हमारी सखियाँ नहीं हैं, जहाँ पर कि वृंदावन का रास स्थली नहीं है, निधुवन नहीं है, सेवा कुंज नहीं है, बंसीवट नहीं है, जहाँ गोपीश्वर महादेव इत्यादि नहीं है, ये सब स्थलों में मैं नहीं जाती। तो ठीक है, मैं ब्रजमंडल की अर्थात गोलोक वृंदावन में अप्रकट लीला में 84 कोष की भूमि को मैं लेकर के चलता हूँ, आप ही तैयार हो जाइए अपने सखियों के साथ। मैं आगे कितना 15 दिन आगे आऊँगा और तुम 15 दिन पीछे आए। वैसे तो तुम मेरी अंतरंगा शक्ति हो, हमारे साथ में रहती, किंतु लौकिक लीला में इस प्रकार से दिखलाना पड़ेगा यह तुम हमसे 15 दिन की छोटी हो, नहीं तो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जितनी पत्नी बड़ी हो जाए, उम्र में बड़ी हो जाए और लंबाई में यदि अधिक लंबी हो जाए और पति छोटा हो जाए तो देखने में ये कड़वा लगता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप 15 दिन पीछे आए, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी में आए, अभी 15 दिन हो गया, उसके कितने दिन पहले बलदेव जी आए, 8 दिन पहले। ये महीना बहुत अद्भुत है, ये जो अभी चल रहा है, पहले बलदेव जी आते हैं किस लिए, संबित शक्ति के, संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देव, बिना बलदेव जी के कोई स्थान नहीं हो सकता, इसलिए क्षेत्र को बनाने के लिए बलदेव प्रभु जी आते हैं। और उसी के बाद उसके पहले हुआ झूलन, सावन महीने में झूलन, राधा और कृष्ण हिडोलों में झूलते हैं। इसके बाद आया पूर्णिमा, बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ, और उसके बाद में कृष्ण की जन्माष्टमी आई, और जन्माष्टमी के 15 दिन पीछे ये राधाष्टमी, एक सूत्र में ये सब लिखे हुए हैं। इसके बाद ही कुछ दिनों के बाद ही मैं कार्तिक महीना आएगा, उसमें स्वयं ऊर्जेश्वरी आएंगी। ऊर्जेश्वरी मैंने क्या, श्रीमती राधिका जी स्वयं उस महीने की अधिष्ठात्री हैं, कृष्ण पुरुषोत्तम महीने के अधिष्ठात्री देवता हैं, और ये ऊर्जेश्वरी ऊर्जा का महीना जो है, शक्ति को संचार करने के लिए वो ऊर्जेश्वरी के रूप में आती हैं राधिका जी, जो कृष्ण में भी शक्ति को, आनंद को, उत्साह को वर्धित करती हैं, इसलिए उनका नाम है ऊर्जेश्वरी। इस तरह से ये महीने बहुत सुंदर सरस हैं। तो कल पहले 15 दिन पहले कृष्ण का आविर्भाव हुआ और ठीक 15 दिन के बाद में राधा जी आविर्भूत होते हैं। इनके आविर्भूत होने की दो बातें हैं, दो कथाएं मिलती हैं, उपाख्यान मिलते हैं ब्रह्मांड पुराण में और दूसरे पुराणों में। अधिकांश रूप में ये देखा जाता है बरसाना से वृषभानु बाबा और नंदगांव से नंद बाबा अपने अपने परिजनों को लेकर रावल में वृषभानु महाराज और नंद बाबा आए महाबन में। क्यों? इसलिए देवताओं का उत्पात बढ़ गया। वृंदावन में जो केशी दैत्य को मारा, नंदगांव में बहुत उत्पात करने लगा, गायों को तंग करने लगा, लोगों को तंग करने लगा, बहुत से सर्प निकलने लगे, बहुत से दैत्य दानवों का ये आतंक बढ़ने लग गया। इसलिए नंद बाबा उपानंद इत्यादि जी बैठक करके परामर्श करके नंदगांव को छोड़ दिया और वृषभानु महाराज अपनी राजधानी बरसाना को छोड़ दिया और वो चले आए रावल में। ये चले गए महाबन गोकुल में चले गए, जहां जब जाते थे तो कैसे चलते थे, छकड़ों में, बड़े बड़ी गाड़ाओं में, गाड़ियों में लाखों कोटि गायों को साथ में रखते और जहां जाते वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते, इसलिए वो गोकुल कहलाता था। नंद गोकुल भी है वहाँ भी नंदगांव में, और फिर यहाँ भी नंद गोकुल है, फिर छट्टीखरा में नंद गोकुल है, फिर शेरगढ़ जो खेलन बने वहाँ पर भी नंद गोकुल है, इसी तरह से काम्यवन में भी नंद गोकुल है, उनके साथ में घूम गए। गोकुल गायों का कुल, कुल माने समूह, गोपियों का समूह, गोपों का समूह, गो बछड़ों का समूह, ये सब के समूह को लेकर के चलते थे, इसलिए वो गोकुल कहलाता था। प्रतिदिन वृषभानु महाराज 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाए। जब रावल में थे तो यमुना पासी में बहती है, मंदिर के पास ही में, वहीं पर स्नान करते थे। स्नान करते करते एक दिन कलही के तिथि में भाद्र मास की अष्टमी में, शुक्ला अष्टमी में स्नान करने गए। वहां पर गए तो देखा कमल का वन है, कमल खिल रहे हैं सब, सतदल इत्यादि, और उसके ऊपर से एक ज्योतिषी निकल रही है। देख करके आगे बढ़े, देखा एक बड़ी सुंदर बालिका नंगी किलकारी भर रही है, अपने पैरों को अंगूठों को मुख में दे रही है, कभी हाथ के अंगूठों को दे रही है, कभी खिलवाड़ करती है, कभी किलकिलकारी जाती है। देख करके इनको बड़ा आनंद हुआ, सोने की पुतली जैसी, बस झट उसको गोदी में उठा लिया और इसके बाद में आए अपने राजभवन में और अपनी पत्नी कृतिका जी से बोली, हम लोग को एक बेटा है, उसका नाम है श्रीदाम, दूसरी कोई बेटी नहीं, भगवान ने अनुग्रह करके हमें एक सुंदर बेटी दी, तुम अपनी गोदी में ले लो और इसको अपनी पुत्री मानो। उन्होंने गोदी में ले लिया, बड़ी सुंदरी लड़की देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। जरा देखो अपने गोदी में लेकर के, अब तक उनका स्तन का दूध सूख गया था क्योंकि बच्चा नहीं था, 3-4 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्ष, किंतु ज्यों ही गोदी में दिया त्यों ही स्तन में दूध आ गया और एकदम झरझर करके गिरने लगा। बेटी को अपना स्तन दे दिया, इस प्रकार से अपनी बेटी मानने लगी। 6-7 दिन हुआ, 15 दिन के कृष्ण का जन्म जब हुआ तो 15 दिन के बाद में नंद बाबा को के घर पर नारद जी आए, बोले आपको कोई संतान हुई या तो, हाँ देखने के लिए गए, उसको आशीर्वाद दिया, उसका ये सब देखा, हॉरोस्कोप देखा और देख करके उनको आशीर्वाद दिया। कहा जी बहुत ही सुंदर सुनहरा लड़का, बहुत प्रभावशाली होगा, तुम्हारे वंश का नाम समस्त जगह में फैल जाएगा। इसके बाद वहां देखा जैसे ये तो कृष्ण स्वयं है, इनकी सलादरी शक्ति भी जरूर कहीं होगी। ढूंढते 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 चले, चारों तरफ में ढूंढते हुए देखा जी इनके मित्र हैं वृषभानु महाराज, ये अभी रावल में हैं, उनके यहाँ जाए। वहाँ पर जाकर के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमको एक संतान तो हुई है, ये बालक है। बालक को देख करके बोले जैसे और कुछ है, ये तो बड़ा मालूम होता है अधिक उम्र का। अरे 10-5 दिन के अंदर में कुछ हुआ, लड़की या लड़का हुआ? नहीं जी हाँ एक लड़की हुई। अच्छा दिखाओ तो देखते हैं। नारद जी एकदम समझ गए, उनको कहा जी थोड़ा सा दुर्वा घास ले आओ, पान के पत्ते लाओ, सुपारी लाओ,
अच्छत रोली
ये सब चीज़ें उनको लाओ। मैं ये कौन सी तिथि में नक्षत्र में ये जन्मी है, ये सब हम देख करके इसका भूत भविष्य बतलाएंगे। बड़े प्रसन्न हुए, वो लाने के लिए गए और इतने में ये स्तव स्तुति राधिका जी की हिलादनी शक्ति का करने, स्तव स्तुति करते करते अपने सखियों के समेत राधा जी आविर्भूत हुई। परम किशोरी, राधिका जी का रूप क्या है या कृष्ण का? किशोर रूप देख करके नहीं। तो वो स्तव स्तुति करते हुए समाधि में लगे हुए थे, इतने में राधा जी की सहेलियों ने ललिता विशाखा इत्यादि जी ने उनको झकझोरा जर उठो देखो तो, नहीं तो अभी अंतर ध्यान हो जाएगी। बस आंख खोल करके देखा राधा जी को, स्तव स्तुति करने लगे। इतने में झट अंतर ध्यान हो गई, सखियां भी अंतर ध्यान हुई। आकाशवाणी अब तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, अब इनकी आराधना करो। आराधना करते 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 तुमको दर्शन पीछे। तो वही नारद कुंड में चले गए गोवर्धन में, और वहाँ पर हजारों वर्षों तक उनकी आराधना करने लग गए। अभी तक दर्शन हुआ कि हो गया कि नहीं हो गया, अब कहीं लिखा तो नहीं है, किंतु जरूर हुआ होगा, हम लोगों के गुरु वर्ग हैं, जरूर हुआ होगा। किस रूप में हुआ होगा, कैसे हुए होंगे, अब कहीं उल्लेख नहीं मिला। अभी आप लोग हैं और भी पुराणों में इस प्रकार का उल्लेख है। शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों आराधना कर रहे थे। शंकर जी आराधना कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई चीज बन जाऊं पहाड़ पर्वत जिस पर कृष्ण का जन्म आविर्भाव हो और उनकी सारी लीलाएं हमारे ऊपर में हो, विशेष करके पौगंड लीला इत्यादि वहां पर हो। और इधर में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं, हम लोग के गुरु वर्ग है ना, तो वो कृष्ण की आराधना नहीं करके राधा जी की आराधना कर। जे आप कृपा करके हमारे ऊपर में आपकी लीलाएं हों, इसलिए राधा जी ने आशीर्वाद दिया है। अच्छी बात है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर में हमारी लीलाएं होंगी, जन्म भी होगा। और इधर में नंदीश्वर को, नंदीश्वर माने नंदी के ईश्वर, नंदी कौन, शंकर जी के वाहन, उनके जो ईश्वर हैं वो नंदीश्वर हैं, तो उनको तब आराधना से प्रसन्न होकर के कृष्ण आ गए। अच्छा हमारा जन्म या हमारी लीलाएं वहां पर, इसलिए ब्रह्म पर्वत पर ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बने और नंदीश्वर पर्वत नंदगांव में इसके ऊपर में कृष्ण की लीलाएं हुई, वहां पर उन राधा जी की लीलाएं हुई। उसी जगह में एक बृहत भानु नाम का, पहले उसका नाम था बृहत भानु उस ग्राम का नाम, पीछे से वहां पर बरसाने में वृषभानु हुए, उन्हीं के नाम के अनुसार में उस गांव का नाम था और वहीं पर एक सरोवर था। विश्वभानु महाराज रोज उसमें स्नान करते थे, इसलिए उसका नाम हुआ विश्वभानु कुंड या विश्वभानु खोद भी कहते हैं, भानुखोद से या विश्वभानु कुंड। वहीं पर से वो स्नान करने जाते और ब्रह्म मुहूर्त में वहीं पर स्नान करते हुए राधिका जी सतदल के ऊपर में खेलती हुई। यह दूसरा हुआ। और तीसरा हुआ, कृतिका के गर्भ रत्न से निकली है वो, कृतिका के गर्भ से निकली है, जैसे जसोदा जी के गर्भ से कृष्ण निकलते हैं और जन्म लीला दिखलाते हैं, उसी प्रकार से कृतिका जी के पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। इसलिए ये सभी चीजें जो हैं कल्प भेद हरि कथा स्वभाव, कल्पों के भेद से किसी कल्प में किस रूप में, किसी रूप में कल्प कल्प रूप में वो इस प्रकार से लीलाएं करते हैं, जन्म की भी लीलाएं, एक समान ही नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उनके गर्भ से भी निकल सकती हैं, बरसाना में भी जन्म हो सकता है, किंतु अधिकांश रूप में उनका जन्म रावल का ही उल्लेख मिलता है, इस तरह से उनका वहां पर जन्म हुआ है। पुराणों में विशेष करके उपनिषदों में राधा उपनिषद भी एक है, राधा उपनिषद में भी उनके उनका उल्लेख मिलता है। लोग कहते हैं कि अभी 300-400 वर्ष पहले राधा का उल्लेख मिलता है, ये सब मूर्ख लोग कहते हैं, जिनको कोई कांडक ज्ञान नहीं है ऐसा लोग कहते हैं। वेदों से उत्पन्न होने से पहले भी राधिका जी सब समय हैं, वो नित्य काल वो हैं, उनका आविर्भाव और तिरोभाव, जन्म और अप्रकट लीला, प्रकट लीला अप्रकट लीला इत्यादि हो। इसलिए वृंदावन गोलोक नित्य धाम है, वहां से वहां पर सब समय रहती हैं, इस जगत में भी नित्य काल में हम, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति उनको इसको देख पाता है। कोई कहते हैं कि 14वीं सदी में, कोई कहते हैं 7वीं सदी में, क्रम विकास के अनुसार में राधा जी का पुराण में क्रम विकास है, ये सब उपहास्य के सब चीजें हैं। आधुनिक इतिहास आधुनिक साहित्य पढ़ने से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाया करती है, न कृष्ण को समझते हैं न राधा जी को, न कोई भगवत तत्व को समझते हैं, एकदम पक्के नास्तिक होते हैं, विशेष करके साहित्यिक लोग जितने होते हैं अधिकांश लोग, बहुत ही कम और ऐतिहासिक लोग, ये दोनों नास्तिक होते हैं, इनके वचनों को नहीं लेना चाहिए। हम पुराणों से राधा जी के तत्व के संबंध में थोड़ा सा हम बतलाएंगे। चल है उसका संस्कृत बहुत सहज है, तो भी मैं इसका अनुवाद हिंदी में बतलाता हूं। ओम अथो ऊर्ध्वमंथिन ऋषय शनकाद्या भगवन्तं हिरण्यगर्भं उपासितत्तो ऊचु देवकः परमो देवः। किसी समय में ऊर्ध्व मंथिन ऋषि लोग, ऊर्ध्वरेता किसको कहते हैं, ऊर्ध्वरेता अखंड ब्रह्मचर्य वाले, अखंड ब्रह्मचर्य वाले हनुमान जी ऊर्ध्वरेता है, ऐसे ऋषि महर्षियों में भी ऊर्ध्व रहता है। सनकादि कैसे हैं, नित्य काल ब्रह्मचर्य रहने वाले, अखंड ब्रह्मचर्य वाले, विवाह नहीं करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है, विवाह नहीं किया वही ब्रह्मचारी हो गया, ब्रह्मचर्य होकर के फिर ब्राह्मण और ऊर्ध्व रहता हो गया ये। इसलिए सनकादि लोग जैसे लोग हैं ये लोग ऊर्ध्वरेता ऋषि हैं। ऊर्ध्वरेता का भी कोई महत्व नहीं है, तभी यहां पर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य को दिखलाने के लिए। भगवत भक्ति नहीं हो तो ऊर्ध्वरेता इत्यादि का कुछ भी मूल्य नहीं है, कोई गुण न रहे केवल भगवत भक्ति रहे तो वो सब गुणों में श्रेष्ठ है, और कोई भी गुण न रहे भक्ति रहे तो सब गुण उसमें आ जाएंगे, और यदि सभी गुण है और कृष्ण भक्ति नहीं है तो बेकार का वो है, कुछ भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए गुण को और गुणों को लाने की चेष्टा मत करो, किस चीज को लाने की चेष्टा करो, राधा कृष्ण के प्रति भक्ति की, अनन्य ममता उनके चरणों में हो, बिना ममत्व के होगा नहीं, इसलिए उनके ममत्व उनके चरणों में होना चाहिए। जिस प्रकार से गैया अपने बछड़ों को पालने के लिए कॉलेज में नहीं एडमिट होती, स्वाभाविक रूप में उनको प्रीति होती है, इस प्रीति को बढ़ाने की चेष्टा करो कृष्ण के प्रति। यदि यह गुण है तो सब गुण आ जाएगा, विद्वता भी आ जाएगी। अरे हम लोगों को देखो जो कोई विद्या नहीं, अब बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े विद्वान लोग नतमस्तक होते हैं केवल भगवान नाम के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से, इस भक्ति को लाने की चेष्टा। कितने बार हो सकता है कि आप लोगों में से कोई सामवेदीय ब्राह्मण हुआ होगा, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद और सबको मुखस्थ किया होगा, अब्रेश्वर के साथ में ओम गणेशाय स्वाहा ये भी किया होगा, ओम दुर्गायै ये भी बहुत आप लोगों ने किया, वेद उपनिषद सब पढ़ करके, किंतु भक्ति नहीं होगी, नहीं तो आप लोग यहाँ रहते नहीं। यदि भक्ति होगी तो वो भगवान के पास मिलेगी, इसका यही प्रमाण है, उससे कुछ नहीं है। इसलिए समस्त विद्याओं में भक्ति जो विद्या है यही सबसे गरीयसी है, श्रेष्ठ है। तो ये सनक आदि ऋषि लोग ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए पूछा, देव को परमा देव, सबसे बड़ा देवता कौन है, कावा तत् शक्तय, उनकी शक्तियां कौन हैं, ताश्चा का बरी ऐसी भौती थी, और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन।